તારીખ 22/3/1996 સમકિતનું બીજ આર્ટિકલ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 92.
કેવલ પરિભ્રમણ બળતા હૈ, સાથ સમજતા હૈ, वस्तु के स्वरूप के ज्ञान अनुसार इस अनुपना छुटने का एक ही रास्ता इसलिए सभी उदय प्रसंग में प्रत्येक कार्य में प्रत्येक प्रसंग में प्रत्येक क्षण में हमारी जागृति होनी चाहिए जिसको हम आत्म जागृति कहते हैं। जब आत्मा है हम भिन्न है किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रारब्ध वशात कुछ लोगों के साथ हमारा संबंध लौकिक तौर से जाना जा रहा है। वास्तव में हम ऐसे ही मतलब जैसे नाटक के ड्रामा के ऊपर स्टेज पर कोई एक्टर आता है एक वक्त में वो भिखारी बनता है तो उसके कमला लाके बैठ बात खड़ी है दरवाजे के गेट पे इसकी सारी गाड़ी कमला लाख के खड़ी है और स्टेज पर वो भीड़ मांगता है रोका रोका भीड़ मांगता है ऐसा होता है कि दूसरे को भी रुला देता है अभी नहीं करता क्यों करता अभी नहीं करता ऐसे अभी नहीं करना है संसार के स्टेज पे लेकिन सदगुण के भिखारी बना मान लिया तो सुखी हो जाओगे। ऐसे हमारी देखने की आजादी आनंद आदि अनंत संपत्ति भीतर में होते हुए भी हम हमारे आनंद के लिए सुख के लिए उन लोग परमाणु के पास जिसके पास सुख है ही जो सुख रही है सुख से शून्य है ऐसे परमाणु के पास हम सुख की अपेक्षा रखने वाले भी मानते हैं। बाकी अपने को बिगाड़ी समझ करके मान लें तो यही कल्पना में विश्वास है तुम्हारा दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं और कोई दुख का कारण नहीं और कोई दुख का कारण नहीं किसी कारण से हर प्रकार के दोष करने लग जाते हैं कैसे सुख की प्राप्ति हो जाए तो हमें तो वास्तविक आना कल्पना विहार नहीं करता है वास्तविकता में आना है कि वास्तव में हम कौन हैं हमारा क्या स्थान है और हमारी सुख शांति के लिए हमारा निश्चय क्या होना चाहिए। कितनी बात आ रहा है तो हमारे जितनी दुनिया बसाई है वो सृष्टि हमने बरबटा कर रखी है ये हमारी विपरीत दृष्टि के कारण सृष्टि हुई है
बराबर
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये जो सृष्टि सारी है यहाँ से हमारा अटैचमेंट हमारा लगाव रहता नहीं उन लोगों के बीच में रहते उनके हमारा लगाव नहीं रहता और लगा भी नहीं से तो परिणाम जो चाहते थे तो परिणाम की जानी नहीं दो जानी लगेंगे नहीं तब हमारे स्वरूप में अंतर्मुख होने का अवकाश प्राप्त होगा। ये अवकाश होने बिना अंदर की जो संपत्ति है गुरु संपत्ति है अनंत दिव्य गुणों से गवा हुआ हमारा परमात्म तत्व है उनका अट्रैक्शन उसकी आसक्ति होगी नहीं। आसक्ति जीव को सुख के कारण और क्या कारण हमें यह देखना है कि बाहर में हमारा सुख था कि कल्पना की थी सुख अंदर में जो सुख भरा सोच ज्ञान से निराकुलता के स्वरूप से पहचाना जाता है, इसका पता लग जाता है। मैं विश्वास क्यों तो ज्ञान का रूप ही शुद्ध है। जैसे आदमी का कोई भी कोई रूप होता है, इसका कोई भी कोई रूप होता है, जो आगे जो काम नाच वगैरह सबको है, लेकिन हर एक के रूप को अलग अलग है कि नहीं है। वैसे ज्ञान का भी रूप है, ज्ञान सुख रूप है, सुख का रूप है, आनंद का रूप है, आत्मा सब में विद्यमान विद्यमानता मौजूद भी रखने वाला पदार्थ है। चित्त मेरे ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान है तो आनंद स्वरूप है। इसलिए आत्मा को सचिद आत्मा करने में
आता है,
आत्मा सचिद आत्मा है, इसके ना कोई ले सकते थे, कोई धर्म वाले नहीं बोलेंगे कि आत्मा सचिद आत्मा नहीं है। लेकिन उस सत्व में मौजूदगी में सब मैंने मौजूदगी विद्यमान का उसमें ज्ञान और आनंद भरा है, वो देखने से विश्वास करता है, विचार को अच्छी जाती है और सुनने से विश्वास नहीं रहता है। जैसे कोई तो पक्का आदमी होता है तो किसी की बात वैसे नहीं मान लेता, कोई भी बात को मान लेता नहीं, इसके लिए उनको कुछ प्रूफ मिलेगा। तो ऐसे जीव भी बहुत पक्का है, वहां तो बहुत सुनी सिद्धन करो सुनी माना नहीं, लेकिन श्री गुरु ने जब दिखाया तब माना, तब माना दिखाया तो माना, देखा नहीं है इस तो है अंदर, ऐसे अंदर में सुख है इसकी प्रतीति, इसका विश्वास कब आएगा, कब आएगा, देखने में आएगा बिना देखे हमको विश्वास आता नहीं। और पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है वो विश्वास होता है, गलत विश्वास का भूलना और सही विश्वास का आना दोनों का एक ही समय है। एक साथ दो घटता है, जैसे अंधकार का जाना और प्रकाश का आना एक ही समय में होता है। प्रकाश को ऐसा बोले कि अंधकार गायब हो रहे हैं, जाता नहीं है माइंड में, कैसे अंधकार ऐसा बोले जो आएंगे तब तो जाएंगे, उसके आने से हम जाएंगे कैसे, तो ये लड़ाई को बेकार के एक साथ बनने वाला है। जो गलत है भी है कि सुख बाहर के हैं कहीं से कहीं एक बार, तो सही आत्मा में ज्ञान निराकुल रूप देखने से ज्ञान स्वयं निराकुल रूप देखने हैं, उसका निराकुल का सुख का प्रभाव है, सुख का स्वरूप है, तो ज्ञान का रूप दिख जाएगा। और देखते ही कि ज्ञान सुख रूप है, सुख के लिए हमने कुछ भी परिश्रम करने में कसर नहीं रखी, अनंत काल में सुख पाने के लिए हमने हर एक प्रकार के जोखिम उठाई है। आज 40,000 की हवाई जहाज में क्यों हम परदेश जाते हैं तो आकाश में सफर करते हैं, तो पायलट उतरे जाकर तो हमारे ऊंचाई 40,000 की है, तो ये समुद्र के ऊपर से हम जा रहे हैं तो કહે કે સમજાવે કે જરૂર નહીં કે પ્રેમ કરે હવે તો કિસી કે હતી ભી મિલને વાલી નહીં દે તો મિલને વાલા નહીં હમ કે મિલને વાલી નહીં કે હમ કે કુતરા ભી નહીં દે ये साहब के जोखिम मन क्यों उठाते हैं
ये तो क्या मन के लिए
तो काल्पनिक सुख के लिए होने के लिए मतलब
हिम्मत बहुत बढ़िया है
ये सुख में है उसके विषय में हमने धोखा खाया फिर भी इतना साहस में बैठते हैं तो सच्चा सुख हमारे भी हम देखे तो हमारे परिणाम इस सुख के लिए हम दौड़ेंगे या धीरे धीरे करेंगे
दौड़ेंगे
जोर से तीव्र गति से कहते हैं कि बहुत स्वाभाविक है ये बात बहुत स्वाभाविक है इसलिए हमें अंतर्मुख होना है तो
जी
आप दूसरे का सवाल है कि हमें अंतर्मुख होना है हमें सभी प्रकार के बाहर के अटैचमेंट रस भाषा में उसको लफड़े कहीं नहीं थे जितने भी लफड़े हैं छोड़ो हमें क्या मिला देना है कैसे सुख को मिलने वाला नहीं है हमारा प्रयोग सुख का है और जितना बार हम अटैचमेंट रखेंगे जितना लगाव होगा उतना परिणाम नहीं लगेगा जो परिणाम बाहर लगेगा वो हम लोगों में लगेगा कैसे आएगा कैसे और अंदर की चीज देखी नहीं तो अंदर का जो आकर्षण होना चाहिए वो हुआ नहीं बाहर का आकर्षण बिका नहीं अंदर का आकर्षण हुआ नहीं तो जो स्थिति है वही हूँ वही रहने का मैं
प्रोसेस क्या है वहां तक पहुंचने का वो सवाल तो वो है प्रोसेस प्रोसेस
प्रोसेस की तो कभी आपको आत्मा की है नहीं शुरू का काम दिन क्या चला कोई प्रोसेस पर चला कि ये होना ये होना ये होना ये होना बाद में अंदर तो पा जाएगा
हाँ हाँ
रोटी कब पकेगी से उसको बनाई जाएगी कच्ची तक वो कच्ची कब बनेगी तो आटा का पीस बनाया जाएगा तब और आटा कब बनेगा तो गेहूं को पीसेंगे तब
बराबर
वैसे ही हमारा अटैचमेंट तोड़ने के लिए इस विषय में हमने जो जो अपराध किए थे और जो परिक्रमण अभी तक चालू है बिना नहीं है उसकी भी चिंता होनी चाहिए कि ये गौरव को बिकेगा तभी हमारी सही खुला चिंता का प्रारंभ होगा और इस खुला चिंता पूर्वक अगर हम मोक्ष के अभिलाषी होते हैं मोक्षार्थी होते हैं तो हमारा एक ध्येय बनता है हमारा एक लक्ष्य बन जाता है टारगेट बनता है आदर्श बनता है तो हमें ये करना चाहिए मंदिर जी में भगवान की मूर्ति क्यों ये भगवान की मूर्ति है या हमारे आदर्श की मूर्ति है हमारा आदर्श को साधना क्या तो जैसे बने वैसे हमको बनना है हमारे आदर्श की स्थापना हमको बहुत समझना है भावना तो बढ़ाने के लिए स्थापना है वैसे नहीं करते हमारी भावना को बलवान बनाने के लिए ये सब तरीके हैं तो जितने भी हमारे काम में हम आगे बढ़े ऐसे और तरीके को हम एडवाइस करते हैं हमें तो काम से मतलब है उस तरह से लेकर के जब ये लक्ष्य समझता है कि नया फोर्स पैदा होता है जिसको शास्त्र के परिभाषा में संवेद कहते हैं। संवेद दर्शन के पांच अंग है, सम संवेद निर्वेद आस्था और अनुपम। तो अनुपम का आना आसान है, निर्वेद में वैराग्य उदासीन का आना भी आसान है, शिक्षा ले लेते हैं पांच पांच में लोग, और प्रसार का मत होना उत्सम कहते हैं, उत्सम कहते हैं उसको, आस्था होना विश्वास होना सब कुछ पे अशुभ पे भगवान पे शास्त्रों पर विश्वास होना ये भी आसान है, लेकिन संवेद लाना उतना आसान नहीं है। चाहे सभी लोगों की मुक्ति में शिकायत रहती है, ये सब कुछ बात करते हुए सुनते हुए और समझते हुए हमारा कुछ संतन हमको जो फल आना चाहिए कार्य करने का भी वो फल नहीं उठा रहे, ये फल को संवेद कहते हैं और संवेद को आता है, संवेद को शांत वो शास्त्र करने से क्यों आता है इसका भी साइंस है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की समझ में आती है, हम काम करें और हमें काम पहुंचना है, दो का अंतर हमें मालूम पड़ता है, तो अंतर ज्यादा मालूम पड़ता है और समय हमारे पास कम है, हम दौड़ने लगे क्योंकि हमारा आयु निश्चित है और आयु का बेहतर पार बहुत बार हमें भोगी है, हमारे पास अनिश्चित आयु, हमारे पास जो अनिश्चित आयु है उसका समय बहुत कम है और हमको बहुत काटना है, तो उसमें का एक दिन रहेगी भी नहीं, भौतिक साइंस का भी एक नियम है बिजनेस ऑफ अपेक्षा ये भी प्रोडक्ट वेलोसिटी तो गति को पैदा कर देता है स्वभाव के एकदम नेचुरल है, उद्यमों में नेचुरल है, आत्मा में तो सुपर नेचुरल है, क्या आत्मा के लिए तो वो सुपर नेचुरल
है। समय के बारे में समय के बारे में रखे नाइन एट
सूत्र का सूत्र है एक दृष्टम अध्ययन एकत्रित का अध्ययन का दूसरा सूत्र है संवेदन बनते धीरे धीरे जनाएगी प्रश्नकार ने प्रश्न किया है संवेद जीव को क्या प्राप्त होता है संवेद माने मोक्षाभिरुचि मोक्ष की अभिलाषा क्या बात कही देखो हमने पंद्रह दिन नहीं पढ़ा है इसलिए के नहीं
टेली हो गए टेली हो गए टेली
ये मोक्ष की अभिलाषा से संवेद आता है जिसको संवेद नहीं आया उसको टैली कर लेना चाहिए स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझे मोक्ष की अभिलाषा हुई
नहीं है,
बस मोक्षाभिलाषी हो जाएंगे संवेद उत्पन्न हो जाएगा और आप उत्पन्न होने के लिए लायक हो जाएंगे सक्षम हो जाएंगे, ये सब प्रोसेस है, यही सब प्रोसेस है और बड़ा प्रोसेस है, काम के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ये एक मात्र अंतर होने का उपाय है, संवेद से दोष से हम हमारे पाप के कारण में हमारे देश के प्रति हमारे लक्ष्य के प्रति आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास समय कम है और बहुत बहुत कम बाकी है, या पूरा पूरा कम बाकी है, बहुत क्या
पूरा
पूरा कम हमारा बाकी है। इसलिए सभी झंझटें को छोड़ करके, सभी लड़कों को दूर करके और अन्य प्रकार के सभी विकल्प को छोड़ करके इस मार्ग इसी काम में लग गया है। जब दूसरे अवरोध मिल जाते हैं तो काम भी आसान हो जाता है। काम में कठिनाई कम है कि अवरोध ऑब्स्टेकल्स खड़े हैं, तब तक जब कोई अवरोध नहीं है तो फिर काम की दिक्कत किस बात की, कठिनाई किस बात की। वो भी हमने खड़ा किया है, हमें ये सृष्टि बताई है, तो कर्म का सृष्टि को हमें खत्म करना चाहिए। हमारे आत्म कल्याण की भावना को तीव्र करनी चाहिए। तीव्र होगी तो ज्ञानी ने कहा है भावना ऐसी बलवान होती है कि इसकी सफलता के लिए कुदरत को इसकी नौकरानी करके काम करना पड़ता है, कुदरत को बदलना पड़ता है। और वहां पर इसका कैलकुलेशन दिया है कि अगर भावना सही भावना सफल नहीं हुए तो ये चौथ ब्रह्मांड को शून्य हो जाना पड़ेगा, ऐसी हमारी भावना बलवान है। भावना बलवान भी बहुत है और बलवान भी बहुत है। कोमल इसलिए है कि इस भावना जिसको पैदा हुई उसके अपनी भावना से विरुद्ध परिणाम थोड़ा सा भी होगा इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत चीज है। तुम तो थोड़ा सा जरूर जाते अंदर का ठेस लगती है, आत्मा जागृत हो जाता, अरे ये क्या हो रहा है, तुम भावना उसके भावना उसको जागृत कर, इतनी कोमल है। फिर भी बलवान उतनी है के संसार के किसी भी प्रतिकूल प्रसंगों को वो देखती नहीं और अनुकूलता में फंसती नहीं, दो में से एक भी अवरोध दोनों अवरोध है, प्रतिकूलता भी अवरोध है और अनुकूलता भी उत्सर्ग है। क्या है अनुकूलता भी उत्सर्ग है, दोनों
अनुकूलता उपसर्ग कई रीते
अनुकूलता में दिन बन जाता है, इसलिए वो उपसर्ग उपसर्ग में क्या परेशानी बढ़ती है, जो फंस गया वो परेशानी हुई या नहीं थी। जैसे पानी कोमल है और पत्थर कठोर है, पानी और पत्थर दोनों में ये तो फर्क है,
अलग अलग
एक प्रवाही है, लिक्विड है, एक सॉलिड है ना। फिर भी पानी पत्थर को तोड़ता है या पत्थर पानी को तोड़ता है,
वाह वाह पानी तोड़ता है,
पानी तो
जो पानी निकलता है नदी के रूप में इसके बीच में बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं तो पानी डर खा करके वापस चला जाता है, अरे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं आगे आते हैं कैसे आगे जरूर, तो वापस चला जाता है। की चट्टान की छाती चीर के आगे जाएगा पत्थर को, नदी में रेत होती है तो कहीं की है किसकी रेत पत्थरों को तोड़ दिया उसकी तो रेत है पानी की रेत मिलती है ना हमको
हमारी शक्ति का अंदाजा क्यों नहीं आता है हमारी शक्ति का अंदाजा क्यों नहीं आता है
कितना बल है और बल से कितना चमत्कार होता है वो देखो चैतन्य का चमत्कार है लोग भौतिक चमत्कारों को देख करके आश्चर्य में डूबते हैं लेकिन जीव ने चैतन्य का चमत्कार देखा एक पामर प्राणी को संसार में भटकते हुए भिखारी जैसे पामर प्राणी को तीन लोग का नाम बनाने ये चमत्कार कोई मामूली है शिक्षित करते हैं जादू कर लो करते तो है नहीं कुछ दुनिया में जादू करते कोई चीज है नहीं ये तो ठीक है ना ये कबूतर को क्या बोलता है
कबूतर कबूतर
बोलते कबूतर में से आदमी बना लेता है किसी में कबूतर डालता है किसी में प्रतीक होता है किसी में ख्याल नहीं करता है छिपा हुआ किसी पहले व्यक्ति को खाली बनाने की बताता है लोग मानते थे व्यक्ति खाली थी लेकिन खाली थी उसमें भी लकड़ी की ट्रिक थी तो बना नहीं होती आश्चर्य हो जाता है लेकिन यहाँ तो कबूतर को भगवान बना
देता
परमात्मा बना इससे बड़ा चमत्कार कौन सा हो सकता है जगत में ये सूत्र चला है सबने निर्णय दात्मा ने प्रचंड चला है श्री भगवान संवेद मानी मोक्षा में रुचि मोक्षा विलासा से जीव को क्या प्राप्त होता है कि संवेद से जीव अनुत्तर धर्म सत्ता प्राप्त करता है तो मुझे दर्शन के साथ ही उनके धर्म की सत्ता कहो आत्मा की सत्ता कहो वो अनुता मुझे भगवान हमारा दुख का क्षय करता है उन्हें दर्शन होते ही अनुता मुझे टूटती है तो कार्यक्रम होने की प्रकृति है तो सभी दर्शन होते ही उठ जाती है और वे क्रम जो मिथ्या को जनित करना अपना श्रद्धा के जनित करना इसका बंद नहीं होता क्योंकि तो सभी दर्शन हुआ तो मिथ्या को जनित करना कर्म बंद नहीं होगा और इस अनंतानंद का क्षय के निमित्त से मिथ्या को विशुद्धि करके दर्शन का आराधक हो जाता है सभी दर्शन का आराधक हो जाता है दर्शन विशुद्धि हो जाती है और दर्शन विशुद्धि से विशुद्ध होकर कितने ही जिन्होंने दर्शन विशुद्धि की है उसकी जीव बहुत जन्म से सिद्ध हो जाता है कितने ही तीसरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते उसको तीन जन्म में तो सुनिश्चित निश्चित हो जाते हैं तो क्षय समय कठिन होता है तो क्षय क्षण होने से बात किया है क्षय की बात किया तो क्षय समय कठिन का अधिक से अधिक तीन बहुत है और कम से कम वही बहुत है वो जाता है
ये
બીજા જેવા પુત્રો તો નાના થઈ ગઈ ક્યાં? તો એ અમારા જો સુખ હૈ, શાંતિ હૈ, વો તો બીજેપી મૂલ્યમાં હૈ.
અમૃત હૈ.
અમૃત હૈ વો. અમૃત તો કૈસે જાણે કે શાંત સુભાવ સે દીનતા. ભગવાન કે પૂછે આનંદ જી મેં ક્યા હૈ? શાંત સુભાવ સે દીનતી મેરે ખતા છૂટતી ના હોય. देखने से कुछ भी नहीं होती, ऐसे शांति में ऐसी शांति ऐसी शांति चाहिए तो कुछ भी नहीं होती. काम तो उसमें डूबे हुए गुजरा पर जिसकी गुजरा पर शांत झलकता है, झलकता क्या है, छलकता है तो देखते ही शांति का आविर्भाव उसको लगता है. સમર તો કોણ જાણે લે અવરોધન કે પતા ચલતા કેસે નુકસાન કરતે થોડા સા ભી નુકસાન બરદાસ્ત કરને કે આપના તૈયાર નહીં. જબ થોડા નુકસાન તૈયાર બરદાસ્ત નહીં કરના હૈ તો જ્યાદા તો ના કરે.
કયા પરિણામ થી કેટલું નુકસાન થયું માત્ર કેવી રીતે ખબર પડે?
પર પદાર્થ કેટલા ખિસકતે હૈ
ઉતના વિકલ્પ લંબાતા હૈ ના. જીતના મારા રસ હોગા ઉતના વિકલ્પ લગાયેગા ઓર જીતના વિકલ્પ લગાયેગા ઉતના દુઃખ લગેગા, ઉલટા લગેગા.
કે તુમકા નુકસાન કી માત્રા કા પતા હૈ તો પ્રશ્ન હૈ તો માત્રા કા પતા ઇસ તરહ સે ચલતા કે જીતના રસ ઉતની માત્રા ઉતની માત્રામાં અશાંતિ હૈ ઓર અશાંતિ વેદના આતી હૈ. વેદન સે પતા ચલેગા કે નહીં? અનુભવ હૈ, વેદન કો અનુભવ રૂપ હૈ. અનુભવ સે પતા નહીં ચલેગા ક્યા? પતા તો હમકો ઇસલિયે નહીં ચલતા કે હમકો ક્યાં વેદન મેં આ રહા હૈ વો હમારે અવલોક મેં નહીં હૈ ઇસલિયે. હમારા જાગૃતિ નહીં હૈ, ધ્યાન નહીં હૈ, લક્ષ નહીં હૈ, યોગ નહીં હૈ, હમકો પતા નહીં ચલતા હૈ કે ક્યાં હો રહા હૈ, કિતના નુકસાન હો રહા હૈ. લેકિન જાગૃતિ અંદર પર આતી હૈ તો બિલકુલ બારીક સે બારીક પરિણામ કા પતા ચલતા હૈ.
જિસ સમય પરિણામ કોઈ ભી ઉઠતે હૈ ઉસકે સાથ મેં ઉસકે સાથ કા જો અભિપ્રાય હોતા હૈ વો ભી સાથ સાથ મેં ચલતા રહેતા હૈ તો ઉસસે પતા પડ જાતા હૈ કે હમારે કો પરિણામ મેં ક્યા આ રહા હૈ. તો અભિપ્રાય જરૂર હોગા તો ઉસકા તો અભિપ્રાય કિસ અભિપ્રાય સે પરિણામ હોરા સાથ સાથ ચલતા હૈ.
યલો કિસી ભી કોને ભી હમકો પકડ દે બરાબર. ઓર ઇસલિયે વો હાથ મેં ઘુમાતે હૈ, દેખતે હૈ હાથ મેં ઘુમાતે હૈ ઉસકો. મેને અલગ અલગ એંગલ સે ઉસકો દેખતે હૈ ઓર નજર ઉસકી પહેલી હો ગઈ હૈ કે કહીં ભી વો છિપા હુઆ હો, ફિર કોઈ કોને મેં બારીક સે બારીક વાઇટ કલર હો તો ભી વો सामान्य आदमी की नजर में बिल्कुल उसको भी आई क्लास ले दो
बराबर,
सामान्य उसको वही आई क्लास ले दो उसको नहीं पकड़ पाएगा
बराबर,
जबकि जो जरूरी है तो पकड़ पाएगा क्यों, इसको प्रैक्टिस है देखने के तो उनकी बारीकारी को समझ सकते हैं हर काम की, कुछ भी कुछ तो तकनीकी होती है तो उनको वो टेक्निक बड़ा असल होती है देखने की, तो बारिश से बारिश कोई डाक हो आशा से आशा बारिश को मैं उनको जो पकड़ क्यों नुकसान से हटना ये जीव का मूलभूत स्वभाव है, शांति से आतुरता से हटना ये जीव का मूलभूत स्वभाव है। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है इसलिए कि हमारे यहाँ दो इंद्रिय जीव को प्रश्न कहते हैं, एक इंद्रिय को स्थावर में स्थावर कायम कर जाते हैं और वो इंद्रिय से प्रस्थित कहते हैं। प्रश्न मैंने क्या है कि जब उनको त्राप पड़ता है दुख होता है आकुलता होती है तो वहां से वो खिसक करके हर जगह चला जाता है, जैसे हमारे यहाँ जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं ये छुट्टियां वगैरह तो धूप में नहीं रह सकते अपने यहाँ बिजली वगैरह में कहीं भी छुट्टियां रहती हो तो धूप में रख देते हैं कभी कुछ करके छुट्टियां बाहर करी रहते हैं बिजली घर हो जाएगी छुट्टियां हैं बिजली घर के हट जाएगी यहाँ से, वैसे बिना छुट्टी वाली छुट्टी घरों में मिल जाएगी क्यों, वो त्रस्ती है उनको उसके साथ उतना इंद्रिय है कोई इंद्रिय है लेकिन उसको त्रास होता है कभी त्रास में कुछ दुख में आशंका आशंका से हटना दो इंद्रिय जीव को भी शहर बनता है, उसके पास मन नहीं है विचार शक्ति नहीं है, मन नहीं है तो विचार करने की शक्ति नहीं है चीजें में, क्योंकि उसके पास तो मन का है, मन को पांच इंद्रिय के बाद मिलता है तो जो मर वाला प्राणी है उनको फालतू की अशांति कैसे अशांति से हटकर शांति में जाना आत्म शांति में जाना अंतर में रही हुई आत्म शांति में अंतर सुख होकर के जाना जीव का शेयर स्वभाव है, लेकिन अपने स्वभाव को जाना नहीं पहचाना नहीं तो इस विषय में अनजाने रहने से हमको इस शांति की उपलब्धि नहीं हो रही है, इसलिए इसका बाह्य उपाय सक्षम उपाध्याय प्रयोग करना जो बात समझी हुई है उसका प्रयोग करना समस्त केशेश्वर बाबा से आती है व्याख्या से व्याख्या व्याख्या से व्याख्या होता है तो व्याख्या भी एक व्यवहार है, क्या है
व्यवहार है
व्याख्या भी एक व्यवहार है, प्रयोग करना इस व्याख्या और व्याख्यान करके प्रयोग करना यही मूल चीज है। प्रयोग से आगे बढ़ सकते हैं। अनुभव प्रकाश में पदार्थ में है वो व्याख्या है और किस संबंधित वाणी है वो व्याख्यान है। व्याख्यान व्याख्या जवाब है। अंतर्मुख होकर के लीन हो जाएंगे तो वाणी का भी व्यवहार रहेगा दूसरों को नहीं होता। वही रास्ते से हमें जाना है मोक्षार्थ। व्याख्यान व्याख्यान का व्यवहार भी छूट जाएगा। गुरु उपदेश देते हैं उपयोग को करके अपने स्वरूप में लीन हुआ तो ये व्याख्यान हुआ नहीं चुका। व्याख्यान में गुरु के व्याख्यान में क्या बात है कि यदि तुम उपयोग को अंतर्मुख होकर के अपने ज्ञानानंद स्वरूप आनंद स्वरूप प्रतिमानंद स्वरूप के आनंद में लीन हो मस्त हो लेकिन ये भी एक व्यवहार है। मतलब क्या व्यवहार है कि कहने से ऐसा हो नहीं जाता बताए क्या तो व्यवहार है होता है प्रयोग। अगर कहने से हो जाता तो कृष्ण स्वरूप तो कहने में कसर नहीं रहती। अपनी वाणी तो अक्षरात्मक है क्रमिक वाणी क्रम से बोलना पड़ता है। एक 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 बात घंटा में एक घंटा में क्रम से बोलने बोलनी चाहती है। धीरे धीरे तो ऐसी बात नहीं है। ओंकार नाम जब सुनता है मनोशरण में तब एक साथ चारों तत्वों से तत्व सुनाई देता है और समझ में आ जाता है और फटाफट आत्मज्ञान होने लगता है।
निमित्त मिला सुनने का निमित्त मिला सुनने का निमित्त मिला
निमित्त मिलता है ना तो उनको प्रयोग से होता है। सुनना सुनाना दो बीच का व्यवहार है। जैसा व्यवहार वस्तु का स्वरूप इसके आगे कुछ है जो उत्तर प्रश्न पाया क्योंकि सुनते हैं तब तो उपयोग बढ़ा रहता है पर अनुभव करते हैं उपयोग रहता है तो सुना लेकिन उत्तर सुनते हो तो मालूम पड़ा कि उपयोग बढ़ा रहे हैं उसको समझ करके अंदर में ले जाने की आज्ञा पालन करें तब तो हमने सुना। अगर आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमने क्या सुना कि सुना हम सुना कर दिया सुना इस तरह से अवलोकन से आगे बढ़ने वाले अंतर्मुखता का रास्ता मिलता है तो रास्ता किस तरह से मिलता है प्रयोग में क्या क्या होता है जो विस्तार से बात लेने लगे हैं तो समाप्त हो गया है रास्ते के साथ में
सुशांत जयी दिन रात रहे पद ध्यानमयी पर शांति अनंत दिव्य है।